नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार।
और मैं हूं विनीता।
आज हम आपके समक्ष 16 से 31 दिसंबर का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, बात नीतियों की हो या फिर योजनाओं की या फिर जन भागीदारी की, बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐसे आह्वान और अभियान देखे हैं जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया बल्कि जन आंदोलन का रूप लिया। सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी गतिविधियों के माध्यम से पीएम मोदी ने भारत को बदलने और अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। राष्ट्रीय विकास के लिए जगाने वाले आह्वान के रूप में उनका उद्घोष एक जन आंदोलन बन चुका है। ये सभी आह्वान भारत के नागरिकों को न केवल एकजुट करने के लिए बल्कि पॉजिटिव ग्लोबल इम्पैक्ट पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा के प्रभाव को उजागर करते हैं। बीते एक दशक में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आह्वान जन आंदोलन बन गए हैं, ये हमारी इस बार वर्षांत समीक्षा के रूप में आवरण कथा बनी हुई है। वर्ष 2024 अपने समापन की ओर है, लेकिन ये 2014 से शुरू हुई विकास यात्रा का एक पड़ाव बन गया है। इस अवसर पर आइए जानते हैं ऐसे 10 आह्वान के विषय में जो 10 वर्ष में बदलाव के कारक बन गए हैं। इनमें से 5 आह्वानों पर हमने कल के कार्यक्रम में चर्चा की थी, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खरीदारी बनने के लिए नहीं कह रहा, आप पूर्ण खरीदारी बनने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कम से कम एक चीज, भले ही वो हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ भी तो हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक्स का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो ये नियमित होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। वोकल फॉर लोकल अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 को हुई। आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। साथ ही हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है और इस आंदोलन को देश भर में काफी गति मिल रही है। आत्मनिर्भरता एक ऐसी मौलिक ताकत है जो एक मजबूत एवं स्थायी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें ये आंदोलन काफी सहायक साबित हुआ है। इसी संकल्प की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वोकल फॉर लोकल पर विशेष महत्व दिया। वोकल फॉर लोकल मंत्र का ही परिणाम है कि आत्मनिर्भरता ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2020 का हिंदी शब्द बन गया था। पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में ही लोगों से आह्वान किया तो ये राष्ट्र फैशन बन गया। वित्त वर्ष 2023-24 में 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार हुआ, जो 2014 से 31,000 करोड़ रुपए की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। भारत को आत्मनिर्भरता का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत।
मैं चाहूंगा इस तरह की व्यवस्थाओं को कैसे और व्यापक बनाया जाए, कैसे इसे लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स काम करें। हमारे सभी बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल व्यवस्थाओं से जोड़ने का टारगेट रखें। भारत का अपना डिजिटल पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई। भारत में 2016 तक यूपीआई एक अनजान शब्द था, लेकिन 11 अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत की गई तो धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ा है। नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक बहुत बड़ी राहत बनकर उभरा। सरकार ने उसे बढ़ाया तो हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि व्यापारी वर्ग ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कैशबैक मिलने लगा। दिसंबर 2016 में भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया गया। लोगों का डिजिटल भुगतान पर भरोसा बढ़ा। यह महज 8 वर्षों में इतना व्यापक हो गया कि विश्व का 46% डिजिटल भुगतान भारत में होने लगा। डिजिटल पेमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का ही परिणाम है कि आज ऑटो रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाले और यहां तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी हो, कोई क्षति दी है, एक आध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग या एक से अधिक ऐसे अंग है जिसमें दिव्यता, दिव्य शक्ति का संचार है जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। मेरे देशवासी, हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे। रेडियो पर प्रसारित होने वाली मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द कहा। दिव्यांग अंगों की दिव्यता को पहचान 27 दिसंबर 2015 को मिली। 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित किया गया। विशेष कतारें, घर से मतदान, ईवीएम पर ब्रेल लिपि की सुविधाएं और कई अन्य उपाय चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं। वर्ष 2015 से शुरू सुगम्य भारत अभियान सुनिश्चित करता है कि सभी संस्थागत बुनियादी ढांचे का ऑडिट हो ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये दिव्यांगों के अनुकूल है। सुगम्यता अब दया या कल्याण योजना नहीं बल्कि अधिकार बन गई है। इस वर्ग के लिए शिक्षा में आरक्षण भी 3% से बढ़ाकर 5% किया गया है। आइए सुनते हैं दिव्यांगजनों को लेकर सामाजिक सोच बदलने वाली प्रधानमंत्री मोदी की मार्मिक अपील।
मेरे मन में विचार आया कि आंख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर, अतिरिक्त शक्ति है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग है जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी, हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे।
मिलेट्स अभियान की शुरुआत साल 2023 में हुई। मिलेट्स के महत्व को स्वीकार करते हुए इसकी घरेलू और वैश्विक मांग उत्पन्न एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। मिलेट्स यानी श्री अन्न प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत, ग्लूटेन मुक्त, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI, डाइट्री फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस आदि सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होते हैं। ये समग्र पौष्टिक आहार का काम करते हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। इसके लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहाँ श्री होती है वहाँ समृद्धि भी होती है, समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव और गरीब जुड़े हैं। मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। मिड डे मील में भी श्री अन्न को शामिल कर हम बच्चों को अच्छा पोषण दे सकते हैं, खाने में नया स्वाद और विविधता जोड़ सकते हैं। मिलेट्स अब जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ गहन चर्चा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भोजन में 30% मिलेट श्री अन्न को शामिल किया गया। वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ब्रेकफास्ट खाद्य पदार्थों, पेय, इडली डोसा मिक्सर, आटा, कुकीज और शिशु आहार सहित श्री अन्न आधारित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की है।
प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया कि आजादी का ये अमृतकाल भारत का स्वर्णिम काल होने वाला है। ये संकल्प सबका प्रयास से सिद्ध होने वाला है। इसमें लोकतंत्र की जमीनी इकाइयों की भूमिका अहम है। पंचायतों की इसी भूमिका को समझते हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत हुई। आने वाले एक साल में अगले वर्ष 15 अगस्त तक हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने हैं। हमें ये भी प्रयास करना है इन सरोवरों में आसपास नीम, पीपल, बरगद आदि के पौधे उस इलाके के शहीदों के नाम पर लगाएं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की। इसका लक्ष्य स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना था। शुरुआती 6 महीने के भीतर 25,000 से अधिक अमृत सरोवर बना दिए गए। इस योजना का उद्देश्य जल स्तर को सुधारना और बारिश के पानी को इकट्ठा कर जल स्तर को बनाए रखना है। ये जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा था। ये पीएम मोदी का आह्वान का ही नतीजा है कि निर्धारित समय सीमा से पूर्व मई 2023 में ही 50,000 सरोवर बनाने का काम पूरा हो गया। साथ ही केंद्र सरकार ने कैच द रेन अभियान चलाया और इसकी सफलता भी एक बड़ी मिसाल बन गई है। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए परिवार हो, गांव हो, कॉलोनी हो, लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गुजरात के साथ साथ देश के कई राज्यों, राजस्थान, एमपी, बिहार में भी जन भागीदारी से हजारों रिचार्ज कुओं का निर्माण शुरू हो चुका है। अटल भूजल योजना चलाई जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी की नीति के पीछे उनकी एक स्पष्ट सोच रही है। उनका स्पष्ट मानना है सरकारें लोगों को नए अधिकार देने का बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन हमारे संविधान ने हमें पहले से ही बहुत सारे अधिकार प्रदान किए हैं। हमें और अधिक एक्ट्स नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति की वजह से ही सरकार के कामकाज के तरीके और संस्कृति में बदलाव दिख रहा है। अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने की संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। अब देश के सामने एक ऐसी सरकार है जो जन मन को जोड़ने के लिए काम कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है तो भारत जोड़ो की भी बात करती है। उनकी जन सहभागिता यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ही परिणाम है कि स्वच्छ भारत से शुरू हुआ सिलसिला डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया से होकर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर पहुंच गया, जिसे लोगों ने ही जन आंदोलन बना दिया। दरअसल पीएम मोदी की कार्यशैली में लोगों की जरूरत को समझना सबसे अहम है। वे सरकार या राजनीति में कोई भी निर्णय लेने से पहले सीधे लोगों की सोच के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह का अध्ययन पूरा हो जाता है तभी वे आगे की रणनीति पर काम कर उसे साकार करते हैं। अगर हाल के कुछ उदाहरणों को देखें तो कोरोना काल में उन्होंने आत्मनिर्भरता की ऐसी मुहिम छेड़ी जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई, क्योंकि लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद थे और ऐसे समय में हर व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों में जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था।
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों ने न केवल सरकार की योजनाओं को सफल बनाने की मदद की है बल्कि उन्हें व्यापक जन समर्थन भी मिला है। ये आह्वान अब सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग में एक जन आंदोलन बन चुकी है। इन अभियानों ने भारतीय समाज में जागरूकता बढ़ाई है और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इन आंदोलनों के जरिए भारत एक नई दिशा में बढ़ रहा है जहां हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अगले सप्ताह आवरण कथा पर चर्चा जारी रहेगी। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति न्यू इंडिया समाचार .pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका एक्स हैंडल NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।